نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب آيات نمبر 1-8 آج ہم کر رہے ہیں يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن آپ کو خطاب فرما کے آپ کی پوری امت کو ایک میسج دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خطاب کیا کس طرح جا رہا ہے, خطاب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان نبی کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے. جو نبی کا لفظ ہے نا نون با واؤ سے, اس سے بھی بنا ہے. اگر اس سے ہم لیں اس نام کو یا اس لفظ کو تو اس کا معنی کیا ہوگا, بلندی. اور نبی کو نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے. دوسرا ان نبی, یہ کس سے ہے؟ نبا سے, نون با حمزہ سے. نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی خبر دینے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ خبریں لے کر آیا آپ کے پاس. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے خطاب کیا ہے نا, اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پتہ چلتی ہے, آپ کا مقام پتہ چلتا ہے. کیسے کسی کو پکارا جاتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کی کتنی احترام کرتے ہیں, کتنی اس کی شان ہے آپ کے نزدیک. آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں یعنی کبھی بھی ٹیچر کا نام نہیں لیا جاتا, مس کہتے تھے, ٹیچر کہتے تھے, میڈم کہتے تھے, لیکن یہاں پہ نام لیے جاتے ہیں اس ملک میں. تو نام لینا اتنا زیادہ ادب والی چیز نہیں ہوتی, کو کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ بچے نام لیتے ہیں, لیکن نام لینا ایگزیکٹ نام سے پکار کے بولنا بہت ادب کی بات نہیں ہوتی. ہاں کسی کے جو عہدہ ہے, اس کا مقام ہے, اس سے اس کو پکارنا وہ ادب کی بات ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب, ڈاکٹر صاحب, یا ہم اپنے ماں باپ کا بھی نام نہیں لیتے. ہم اپنے ماں باپ کو امی ابا کہتے ہیں. ہم دیکھیں کوئی بھی اپنے ماں باپ کا نام لے کے نہیں ان کو پکارتا. اسی طرح جو بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں گھر میں بھی, تو ہم کسی کو باجی کہتے ہیں, کسی کو بھائی جان کہتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں, یہ کہہ کے ہم ان کو احترام دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یا ابراہیم بھی فرمایا, نوح علیہ السلام کا بھی نام لیا, یا موسیٰ بھی فرمایا, لیکن کہیں پہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا, یا ایوہ النبی کہہ کے پکارا, یا ایوہ الرسول کہہ کے پکارا, یا ایوہ المدثر یہ اس طرح سے کہہ کے پکارا, یا ایوہ المزمل کہہ کے پکارا. یہ سارے اچھا پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ, جس کو آپ بہت پیار دیتے ہیں, جس سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے, یہ اتنے ہی زیادہ آپ اس کے نام رکھ لیتے ہیں. ایسے آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو ان کے کتنے سارے نام آپ نے رکھے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ناموں کے ساتھ, القابات کے ساتھ آپ کو پکارا, آپ کو یہ شرف دیا, آپ کی قدر و منزلت اس میں پتہ چلتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ, وہاں پہ لیکن بتانا مقصود تھا نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن ایک ویسے یا محمد کہہ کے پکارنا, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے قرآن کریم میں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ڈفرینٹ بات ہے, ایک یونیک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس صورت میں آپ بہت دفعہ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے بیان کی گئی ہے. तो क्या पहला हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया? इत्तकिल्लाह, ऐ नबी अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए। तकवा क्या है? तकवा का रूट है वाव काफिया और विकाया, इसका माना होता है किसी चीज से बचना, एतराज करना। यानी बचना क्या मतलब है? यानी अल्लाह की सजा और उसके अजाब से बचना, और उसके लिए क्या करना है? अल्लाह की इताअत करनी, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना, और उसकी जो मना करदा चीजें उनसे बचना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरिए। हालांकि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। क्या चीज होती तकवा? समझ आई है कि अल्लाह की नाफरमानी को इसलिए छोड़ देना कि अल्लाह के अजाब से आप बचना चाहते हैं। फरमा बरदारी के काम इसलिए करना ताकि अल्लाह की सजा से बच जाए। ये तकवा एक हालत होती है दिल की, ये बाहर बाहर नहीं होता कि हम डर डर के दिखाएं और हम कहें भाई मैं बहुत डरती हूँ अल्लाह से। तकवा दिल में होता है कि अल्लाह की अजमत का, उसकी उसकी उसका खौफ हमारे दिल में हो, उसकी अजमत हमारे दिल में हो। ये उस रब को नाराज कर दो तो ये एक समझ ले एक ताल्लुक है आपका अल्लाह के साथ। तकवा हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे ज्यादा था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे, सबसे ज्यादा अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले थे, फिर भी कहा जा रहा है कि ए नबी अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। इससे पता चलता है कि तकवा के लेवल्स हैं। अगर मैं और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पढ़ने के बाद अब ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोई काम करने लगती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि ये अल्लाह की नाफरमानी का काम है, ये मैंने नहीं करना, इसे बचना है। या अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और उसके बाद मुझे एहसास हो जाता है कि ओहो मुझसे ये गलती हो गई, ये तकवा है, अच्छी बात है ये। मगर इसके बाद मुतमईन होके हम नहीं बैठ सकते, इसलिए कि तकवा के भी लेवल्स हैं, उसके मदारिज हैं। तकवा में भी आप एक से ऊपर लेवल, उससे ऊपर लेवल, उससे ऊपर लेवल। देखिए शुरू के अंदर हमें गलती करने के बाद याद आता है ओहो ये तो गलती होगी, फिर जब आपका तकवा बढ़ता जाता है ना तो पहले ही आपके दिल में आ जाता है नहीं ये नहीं करना, इससे रुक जाना। तो इस तरह आगे आप बढ़ते रहते हैं। तो मुतमईन ना हो जाए कि बस मेरे अंदर अब तकवा आ गया, अभी तो आया है। एक अपर लेवल का भी तकवा है, उससे अपर लेवल का भी तकवा है, वहां तक पहुंचना है हमें। ये हम इतनी अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने लगे और जिससे उसने रोका है रुक जाए, पहले ही रुक जाए, गलती करने के बाद नहीं। तो तकवा है ही खुद को गुनाहों से बचा के रखना, परहेजगारी भी इसका आप देखते होंगे माना लिखा होता है। परहेज भी किससे है? ये अल्लाह ताला ने जिन चीजों से रोका हुआ उनसे परहेज कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पढ़ने से आपको फर्क तो लगा होगा अपने तकवा में, पहले ही कैसा था जब कुरान नहीं पढ़ते थे और अब कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ फर्क जरूर आया होगा। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप तकवा इख्तियार करें तो क्या हमारे अंदर कोई गुंजाइश नहीं है तकवा में और आगे बढ़ने की? बिल्कुल होगी। इसलिए एक हाथ जिस पे भी आप तकवा के लेवल पे, सबका अपना अपना मुख्तलिफ होगा, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। इमाम अहमद फरमाते हैं कि तकवा की जो बुनियाद है ना वो मुहासबा नफ्स है। यानी इंसान अपना नफ्स का मुहासबा करता रहे, हिसाब लेता रहे। जैसे हम लोगों के पीछे पड़ जाते नहीं, अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते, ये करो ये नहीं करना, ये करो ये नहीं करना, नो नो वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं, इस तरह अपने आप के पीछे पड़ गए हम। हर बात अपने आप को टोकते रहे, ये नहीं करना तुम्हें, वो नहीं करना, उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं देखना, ये नहीं बोलना, ठीक है, इस तरह अपने पीछे पड़ गए हम। जितने दूसरों के पीछे पड़ते हैं अगर अपने पीछे पड़ जाए तो मेरा ख्याल हमारी बहुत सारी इसलाह हो जाए। लेकिन यही हमें भूला रहता है, ये अपनी इसलाह हमने करनी है, हमें ज्यादा फिक्र दूसरों की इसलाह की होती है। अल्लाह हु अकबर। और ख़ास तौर पे ये आयात उस वक़्त नाजिल हुई जबकि हज़रत जैद रज़ीला तला ने ज़ैनब रज़ीला तला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी साथ थी उनको तलाक दे दी हुई थी। अब वो मालूम है कि हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत जैद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही करवाया था कि ज़ैनब रज़ीला तला मान नहीं रही थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहला के उनको राज़ी कराया और हज़रत जैद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे उनके साथ निकाह करवाया। लेकिन ये शादी निभ नहीं सकी क्योंकि हज़रत जैद के ऊपर एक स्टैंप लग चुकी थी, हालांकि अब तो आज़ाद करदा हो चुके हुए थे लेकिन एक स्टैंप तो थी ना कि कभी गुलाम रहे हैं। तो हज़रत जैनब उनको उस तरह से कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई जैसे एक हस्बैंड का रुतबा एक मकाम होता है और होना चाहिए एक बीवी की नज़र में, उस तरह से उनको मकाम नहीं दे सकी। हज़रत जैद कई दफ़ा इस बात की शिकायत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे कि भाई हमारी नहीं सही बन पा रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मतलब तसल्ली दे के और उनको यानी इस तरह से रखते थे कि ये कहीं तलाक ना दे दें उनके। हज़रत जैनब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज़ी कराया था इस चीज़ पर, तो नहीं चाहते थे कि अब उनके ऊपर अब तलाक का एक यानी लग जाए एक वो चीज़ के, यानी उस ज़माने में ऐसी बुरी तो नहीं समझी जाती थी लेकिन एक सदमा तो था ना, तो ये ना उनके ऊपर लगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि वो तलाक दे। मगर आखिर को उन्होंने तलाक दे दी और अब अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा मिला कि अब आप उनके साथ निकाह करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवॉइड कर रहे थे, आपको झिझक थी। झिझक क्या थी कि देखें उस जमाने के अंदर जो एक तरीकाकार था वो ये था, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी रस्म कह लें या उनका एक तरीका कह लें सोसाइटी का, कि जो मुंह बोला बेटा होता था एडॉप्टेड सन होता था उसको सके बेटे की तरह ही समझा जाता था, विरासत में भी हिस्सा दिया जाता था, सलूक में भी इसी तरह होता था, यानी वो कहलाता ही उसका बेटा था, फलां बिन फलां जैसे जैद जैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। ठीक है, तो वो ये अब जाहिर है जो असका बेटा है उसकी बीवी के साथ तो शादी नहीं कर सकता, सुसर अपनी बहू के साथ शादी नहीं कर सकता, अबदी तौर पे वो महरम है, चाहे बेटा जिंदा रहे या मर जाए, चाहे बेटा तलाक दे दे अपनी बीवी को, लेकिन सुसर फिर भी अपनी बहू से कभी भी शादी नहीं कर सकता, वो उसका महरम ही रहेगा। ठीक है, अब क्या था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करते तो बाज लोग तो पहले ही इस तलाश में रहते थे कि कहीं कोई मौका मिले, कहीं कोई बात हाथ आए तो हम बस शुरू हो जाए, और स्कैंडल्स की तलाश में रहते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करते हैं तो उनके तो हाथ एक और बात आ जाएगी और वो फिर आराम से नहीं बैठेंगे, इसका खदशा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए बहुत अवॉइड कर रहे थे। और ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ही कोई फिक्र थी कि आए मेरे ऊपर बातें बनेंगी, वो तो बातें पहले से ही वो पीछे पड़े ही हुए थे लोग, और जब इंसान ये शादी ब्याह के मामला होते तो आप सोचें कि एक बंदा अगर दीन की ये काम करने वाला ना हो, एक आज़ाद को ये काम आदमी हो, तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, कहता लोग बातें करते रहे मुझे कोई परवाह नहीं लोगों की बातों की, मैंने तो बस यहाँ शादी करनी मैं करूँगा। ठीक है, तो उनको परवाह करने की ऐसी उनको बात नहीं होती जो आम लोग होते, लेकिन जब कोई दीन का दाई है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के नबी हैं, जब वो कोई काम कर रहे होते तो उनके काम के पीछे जब ये लोग पढ़ते थे तो फिर उसका इफेक्ट दावा के काम पे पड़ता था, तबलीग के ऊपर पड़ता था, ये देखो ये अपने आप को अल्लाह के नबी कहते हैं और देखो ये करते हैं। जैसे आज भी आप देख ले मसलन कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है, कोई आलिम दीन है या कोई और बड़ा आदमी है, जब वो कोई काम करता है तो फिर सब लोगों को मौका मिल जाता है, देखो जी अपने आप को कहते हैं ये और देखो ये क्या कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खदशा था कि ये तो फिर यानी आपकी जात की नहीं आपको वो थी, ये था कि ये दीन का काम ना इफेक्ट हो। तो फरमाया गया अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए, लोगों की बातों से ना डरें, अल्लाह से डरें। वला तुतील काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफरों और मुनाफिकीन की बातों की इताअत ना करें, इनकी बातों को यानी ना माने, ना इनकी बातों का कोई प्रेशर कबूल करें। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई काफरों और मुनाफिकों की बातों में नहीं आते थे, लेकिन क्यों कहा जा रहा है? ताकि आपके जो मुखालिफीन है वो अच्छी तरह समझ लें कि आप इनकी बात में नहीं आएंगे, क्योंकि ये काफरों की तो ये रस्म ही थी, उनका तो तरीका ही था। और मुनाफिकीन वो भी ऐसे लोग थे जो काफरों से कम नहीं थे। दोनों का एक ही जगह जिक्र इसीलिए किया गया कि ये दोनों ही नुकसान पहुंचाने वाले थे, फर्क सिर्फ ये था कि काफिर सामने आके नुकसान देते थे, मुनाफिकीन पीठ पीछे छुरा घूमते थे, छुप छुप के साजिशें करते थे, सामने नहीं आते थे। ये लोग ऐसे थे कि हालांकि कलमा पढ़ चुके थे जुबानों से, लेकिन फिर भी जिसको आस्तीन के सांप कहते हैं वो भी थे, और दीन के दुश्मनों के साथ मिल के साजिशें किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया, ये जो प्रोपोगंडा करें, स्कैंडलाइजिंग करें, आप इसकी परवाह ना कीजिएगा। आम लोगों के लिए देखे कितना आसान होता है, लेकिन एक नबी या एक लीडर, लोग उसको जब लोग देखते हैं ना कि हम अब कोई दलील तो ला नहीं सके हक के मुकाबले में, अब हम इस दावत को तो दबा नहीं पा रहे हैं, तो अब वो क्या करते हैं, जातियात पे उतर आते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। कभी आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगा दी, यहाँ पे देखें तो एक और चीज के पीछे पड़ गए कि आप यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करते हैं तो उसके बाद उनको मौका मिल जाता। तो आपने परवाह नहीं करनी इन लोगों की। सूरह नूर में आपने देखा था, यह सूरत और सूरह नूर काफी मिलती जुलती है। सूरह नूर में आप देखते हैं कि वहां पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत की बात है, आपकी फैमिली को नहीं छोड़ा गया, यहाँ पे इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के पीछे पड़ गए। तो यहाँ पे क्या काफरों और मुनाफिकों की बात की इताअत ना करने का मतलब ये कि कोई भी उनकी बात ना सुने? अरे अगर कोई काफिर हमें कहता है कि जी आप यहाँ तशरीफ ले आए, मैंने आपसे मिलना है, तो हम कहें नहीं जी कुरान कहता है कि काफरों की इताअत नहीं करनी, लिहाजा मैंने नहीं आना। ऐसी बात नहीं है, बल्कि यानी कुफार और मुनाफिकीन उनके तरीकों की इताअत नहीं करनी, उनके तरीकों की मुखालफत करनी, खास तौर पे जो तरीके हमारी शरीयत में है और उसके खिलाफ वो लोग बात करते हैं उसमें उनकी इताअत नहीं करनी। आज अफसोस की बात यह है कि हम पसंद करते हैं काफरों के तरीकों को और हमें नहीं पसंद आते, सॉरी मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, कि अपने नबी के तरीके नहीं पसंद आते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा अपनी उम्मत को उनके तरीकों की मुखालफत करने का हुक्म दिए। चंद एक एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक यहूदो नसारा बालों को नहीं रंगते, तो तुम बालों को रंगा करो, तुम उनकी यानी मुखालफत करो, कलर नहीं करते थे वो बालों को, ऐसे ही छोड़ देते। तो सफेद बाल है तो सफेद ही छोड़ देते। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मैंने अभी आपको बताई बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूछें कम करो और दाढ़ी बढ़ाओ, मजूस की मुखालफत करो। मजूस कौन होते थे? जो आतिश परस, आग को पूजा करने वाले, तो वो लोग मूछें बढ़ाते थे, दाढ़ी काटते थे। आज हमने क्या किया, आप देखिए हमारे मुल्कों के अंदर मूछों को रखा चाहिए कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं ये कहा जाता, और दाढ़ी रखते नहीं है, मूछे रखते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत मैं आपको बता रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उन्होंने उलट करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मुशरिकीन की मुखालफत करो, मूछे कम करो, आप देखिए उलट होता है। फिर फरमाया योम आशूरा जो है 10 मुहर्रम का रोजा रखो, اور اس میں یہود کی مخالفت کرو عاشورہ سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا اس کے بعد بھی رکھ لو, یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو دس کا نہ صرف رکھو ساتھ ایک دن کا ملا لو, حالانکہ روزہ ہی رکھنا تھا نا, تو یہودی بھی روزہ رکھتے, ہم نے رکھنا ہے لیکن ہم نے ان کے جیسا نہیں کرنا, حالانکہ ایک عبادت کا ہی عمل ہے, اس میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا, کیونکہ آپ نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے, انہی میں کاؤنٹ ہوگا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو ان کے طریقے پسند آتے تو ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اپنے لباس میں, اپنی عادات میں, اپنی سیرت میں, اپنے ظاہر میں کسی اور قوم کی آپ کو طور طریقے پسند آ رہے ہیں, اپنی یعنی فیسٹیولز میں, اپنی خوشیوں غمیوں کے طریقوں میں آپ کو کوئی اور قوم پسند آ رہی ہے کہ ان کے زیادہ اچھی, عبادات میں تو ان کی نفی کرنی ہے, عبادات میں تو ان کے جیسا ہونا نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں صرف عبادت ہماری اگر ڈیفرنٹ ہو گئی تو باقی چیزوں میں ہم ان کے جیسے ہو سکتے, کیسے؟ یہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پہ آپ جو فیشل ہیئر کی بات ہو رہی ہے یا پھر بالوں کو رنگنے کی بات ہو رہی ہے, یہ تو کوئی عبادت کی بات نہیں تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. تو اس میں ان کی تہذیب, ان کا جو کلچر ہے اس کو نہیں اختیار کرنا, کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. اگر ہم ابھی تک اس چیز میں کنفیوزڈ ہیں کہ ہم بھی کرسمس منائیں کہ نہیں منائیں, ہم بھی سینٹا کلاز بنے کہ نہیں بنے, ہم بھی وہ جو کرسمس ٹری ہے وہ لگائیں کہ نہیں لگائیں, اگر ہمیں یہی نہیں ابھی تک بات سمجھ آئی تو یہ آیت کیا, ہم قرآن کیا سمجھ رہے ہیں پھر؟ یہ ہم نے ان کی جیسی معاشرت نہیں اختیار کرنی, ان کا طریقہ الگ ہے ہمارا الگ ہے, اسلام نے ہمیں اور طریقہ دیا ہے. اگر ہم ان کے جیسے بنیں گے تو پھر ہم انہی میں سے کاؤنٹ ہوں گے. وہ جو مغدوب علیہم اور ضالین ہیں ان کے راستے پر چل کے کیا ہمیں خیر مل سکتی ہے؟ کیا ہمیں صحیح راستہ مل سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, اب ویسے اب وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, وہ بھی کپڑے پہنیں گے, ہم بھی کپڑے پہنیں گے, ان چیزوں میں تو ظاہر ہی آتا ہے, یا دنیاوی چیزوں کے اندر ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے, ان کے ساتھ اچھی طرح بات بھی کریں گے, اگر ان کو کبھی کوئی ضرورت پڑے گی تو اس میں بھی ان کے کام آئیں گے, وہ ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے بزنس میں, ہمارے آفس میں ہیں, تو ہم اچھی طرح, مگر یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے طریقے اپنا لیں تاکہ ہم ان کو پلیز کریں, کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہمیں کہہ رہے کہ جی آپ ہمارے طریقے اختیار کریں. کیا ان کو پلیز کرنا ضروری ہے یا اللہ کو پلیز کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کب کہا کہ اگر آپ ہماری تہوار نہیں مناؤ گے تو ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے؟ انہوں نے آپ کو زبردستی دھکے دے کے تو نہیں ویلنٹائن منوانا؟ کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ کوئی کہہ رہا نہیں آپ ضروری منائیں ورنہ آپ ہم میں سے نہیں. نہیں, ان کے اپنے طریقے, ہمارے اپنے طریقے. اب وہ اگر مثال کے طور پہ مثلاً بجلی استعمال کرتے ہیں, پنکھا استعمال کرتے ہیں, گاڑی استعمال کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ان چیزوں کے اندر کوئی نہیں, اس میں جائز ہے, لیکن جو اعتقادات ہیں, جو تہذیب ہے, جو کلچر ہے, جو پہننا اوڑھنا ہے, جو یہ سب چیزیں, ان میں مشابہت نہیں کر سکتے. ہمیں ہماری لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں قرآن میں, ان کو تو ہم چھوڑ دیں اور ان کو اپنا لیں, یہ درست نہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں, خاص طور پہ جب ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں تو ہم بعض اوقات یعنی ضرورت نہیں بھی ہے اور ہمیں کوئی ایسی زور زبردستی نہیں بھی ہے, پھر بھی ہم خود ہی ٹھان لیتے ہیں کہ بس ہمیں وہی طریقے اختیار کرنے جو ان کے ہیں, چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں, چاہے ہم یہاں رہیں, چاہے افریقہ میں رہیں, چاہے نارتھ یا ساؤتھ پول میں جا کے رہیں, ہم نے رہنا مسلمان ہی ہیں, دنیا کے کسی خطے میں بھی ہم رہیں, مسلمان کی ایک پہچان ہوتی ہے اور وہ نہیں ختم ہونی چاہیے. ہم اصل میں جیسا دیس ویسا بھیس, اس کے اوپر چلتے ہیں, جہاں جاؤ جدھر کو ہوا کا رخ دیکھو ادھر کو چل پڑو, یہ اس مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کے دین پہ جمع رہتا ہے, اپنے اسلامی طریقوں پہ چلتا ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی دنیا میں چلا جائے. फिर आपका क्या दीन हुआ कि अगर आपने जैसा देश वैसा भेस करना है, जैसे जहां आप रह रहे हैं वैसा ही बन जाना, तो आप तो फिर कहीं पे भी चले जाएंगे वैसे ही बदलते रहेंगे, फिर इस्लाम आपका क्या हुआ। तो वला तुतील काफिरीन वल मुनाफिकीन, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं करना था, आपने तो नहीं लचक दिखानी थी उनके आगे, लेकिन ये हम सब के लिए एक मैसेज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके प्रोपोगंडा की वजह से, उनके वजह से एक चीज को अवॉइड कर रहे थे, फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इत्तकिल्ला, अल्लाह का डर होना चाहिए। इन्नल्लाह कियाना अलीमन हकीमा, अल्लाह है जो इल्म वाला भी है हिकमत वाला भी है, उसको पता है कि उसकी वो जो हुक्म दे रहा है उसको पता है इसकी हिकमत है, और वो अपने इल्म से दे रहा है। अच्छा, अब यहां पे इस आयत में एक चीज करने को कही गई और एक चीज से मना किया गया, ठीक है। नंबर टू, क्या चीज है जो अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया, वत्तबे मा युहा इलैका मिन रब्बिक, और इत्तेबा कीजिए, पैरवी कीजिए, फॉलो कीजिए। इत्तेबा क्या होती है, किसी के फुट स्टेप्स जैसे हैं वैसे उसके ऊपर चलना। मां जो यूहा, वही की जाती है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, आपने यानी अल्लाह की वही को फॉलो करना है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये चीज उतरी थी कि आपको हजरत ज़ैनब से निकाह करना है, मगर ये कुरान करीम में ये आयत नहीं है। इससे पता चलता है कि वही की दो किस्में हैं, ये लिख लीजिए, वही मतलू और वही गैर मतलू, ता के साथ। वही मतलू कौन सी है, जो तिलावत की जाती है, जो कुरान करीम में है, ये सारी वही मतलू है। वही गैर मतलू कौन सी है, जिसकी तिलावत नहीं होती, यानी वो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी तो सही मगर वो अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, वो तिलावत नहीं की जाते, वो कुरान का हिस्सा नहीं, वो आपने अपने अल्फाज में वो बात बयान फरमा दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या हुक्म था कि इसी वही की पैरवी आपने भी करनी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जेम्प्टेड नहीं थे, ये नहीं था कि आपको जरूरत नहीं है, आप पे तो कुरान उतर ही रहा है, आप तो पहले ही इतने नेक हैं, आप तो पहले ही इतने मुत्तकी हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, तो अब आपको नहीं जरूरत है। नहीं, ए नबी, जिंदगी के हर मामले में आपको अल्लाह की वही की ही पैरवी करनी है, और हम सब के लिए असल में ये मैसेज है कि हमें इत्तेबा करनी है तो अल्लाह की वही की। अल्लाह की वही क्या है, कुरान, कुरान के अलावा वही गैर मतलू हो गई तो हदीस हो गई, तो वही की पैरवी करना ही इस्लाम है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का हमारे बारे में क्या फैसला है, क्या हुक्म है। अब बाज लोग जब कुछ अस्तग़फिरुल्लाह भी गुमराह हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है वही इलाही की, यानी अब हमें ना तो नमाज की जरूरत है ना ये, वो कहते हैं जी ये बड़े पहुंचे हुए हैं, तसव्वुर में ये बस अल्लाह से बातें कर लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में पहुंच जाते हैं, बस तसव्वुर में ये नमाज पढ़ लेते हैं, आपको क्या पता इनकी तो रोज नमाजें खाना काबा में होती हैं, ये किस तरह से वहां पहुंच जाते हैं, कैसे वो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजें, तो इनको तो ना वुजू की जरूरत, ना नमाज की, ना किसी चीज की, बहुत पहुंचे हुए। अब आप ये अंदाजा कीजिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आपको इत्तेबा करनी है इस वही की, तो कोई और एग्जेम्प्टेड हो सकता है, कोई इससे बाहर हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं मेरे ऊपर नहीं है क्योंकि मैं बहुत नेक हूं, मुझे नहीं है जरूरत, ऐसा नहीं है। इसी तरह ये भी हमें पता चलता है कि लोगों की पैरवी नहीं करनी, लोगों की बातों की पैरवी नहीं करनी, जिधर हवा का रुख है उस तरफ को नहीं चलना, चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की, पैरवी करनी है तो अल्लाह की वही की, चाहे जमाना कोई भी हो, चाहे 21st सेंचुरी हो, चाहे 14वीं इस्लामी सदी हो, کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو. اتبع ما یوحی الیک, جو بھی آپ کے پاس وحی کا علم آ گیا اسی کے مطابق آپ چلیں. یہ بہت کلیئر ہو جانی چاہیے ہمیں بات, زمان و مکان سے یعنی ابو یہ بات ہے, زمانہ کوئی بھی ہو جگہ کوئی بھی ہو, اتباع کرنی ہے تو ایک ہی چیز کی. اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے, کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اور چیزوں کی اتباع کرنی, یعنی کس کس چیز میں اتباع کرنی, صرف نماز میں یا صرف روزے میں یا صرف زکوٰۃ اور حج میں, نہیں, پہننے میں بھی, اوڑھنے میں بھی, معاملات تجارت میں بھی, خانگی زندگی میں بھی, نکاح و طلاق میں بھی, ہر چیز میں, مرنے جینے سے متعلق ہر کام میں اتباع وحی کی کرنی ہے اور وہی رہنمائی دیتی ہے ہمیں. یہ الگ بات ہے اگر ہم خود آنکھیں بند کر لیں. ان اللہ کہنا بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کو ہر خبر ہے جو بھی تم کام کر رہے ہو. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف دل میں یہ ایک بات تھی کہ جھجک تھی کہ مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے, اور آپ کو پہلے ہی اشارہ مل گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت زید طلاق دیں, یہ بھی ایک وجہ تھی. اوکے, آپ کو اشارہ مل گیا تھا کہ اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اس کے بعد آپ نکاح کر لیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو دل میں چھپی ہوئی بات تک معلوم تھی, وہ سب جانتا ہے جو تمہارے اعمال ہیں. اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریچ دلوں تک بھی ہے, دلوں میں جو اٹھنے والے خیالات ہیں کہ دل جھجک رہا ہے یا دل شوق کر رہا ہے یا دل خوش ہو رہا ہے یا دل تنگ ہو رہا ہے, یہ جو ہماری بیک میں ہوتی ہے نا, ہمارے ایکشنز کے پیچھے ہمارے دلوں کی حالت, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اور صرف واقف ہی نہیں ہے, وہ اس کے اوپر بھی پکڑ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ نہیں صحیح ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ آدمی کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیسے کروں کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر توکل کریں, یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ کون سا حکم آ گیا, نمبر 4, ٹھیک ہے, نمبر چوتھے نمبر پہ یہ حکم آ گیا. اور ہم سب کے لیے بھی کیا, اللہ پر توکل, یقین جانے کوئی بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے توکل ضروری ہے. وہ کیسے, اب مثلاً ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حجاب لوں کیسے لوں, یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, لوگ کیا کریں گے, کیا کہیں گے, جاب کیسے ملے گی, کمیونٹی میں کیسے چلوں پھروں گی, وہ باتیں کرے گا, وہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے, مجھے کوئی ایسے نہ کہہ دے, ابھی کتنی ساری باتیں دل میں آ رہی. اب اگر تو توکل ہے اللہ پر, بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور اس کا حکم, یہ مجھے بھروسہ ہے کہ اس کا ہر حکم خیر کے اوپر ہے اور اس کا حکم ماننا میرے اوپر ضروری ہے, مجھے بھروسہ ہے کہ اس میں میرے فائدہ ہی فائدہ ہے, میں اس کے اوپر بھروسہ کر کے یہ مان رہی ہوں, تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں اکیلا, تب آپ کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا, تو پھر خدشات آئیں گے, پھر ڈر لگے گا, پھر کرا نہیں جا سکے گا. تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ضروری ہے. آپ کوئی عبادت کا بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں کروں گی نا, اس میں میرا فائدہ ہے, اس میں مجھے کل کو وہاں پہ اجر ملے گا, اس میں وہاں پہ مجھے عذاب سے پناہ مل جائے گی, اس لیے میں کر رہی ہوں. اب میں اگر تہجد کے لیے اٹھنا, آئی نیند پورا, لیکن مجھے اللہ پہ بھروسہ, اس کے وعدوں پہ بھروسہ ہے, مجھے پتا ہے کہ آج میں یہ کروں گی مجھے فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھروسہ مجھے اٹھائے گا. اور اگر یہ بھروسہ نہیں ہے نا, اور شک ہے اور پتا نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں, اعتماد نہیں ہے نا اگر, تو پھر نہیں کر سکیں گے. اور اعتماد ہے, بھروسہ ہے, تا तवक्कुल है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है तो फिर कोई काम भी मुश्किल नहीं। यही भरोसे की कमी होती है जब हमसे किया नहीं जाता। कहीं आप जाके देखेंगे वहां पे भरोसा कम हो गया और खौफ और खदशात बढ़ गए, तब जाके फिर हमसे हम हीले बहाने भी करते हैं, फिर हमसे वो काम किया भी नहीं जाता। वकफा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह काफी है वकील ना, वो वकील है, वो अपने बंदों की मसलहतों को जानता है, उनके हर मामले में उनके लिए काफी है। वकील वो होता है जिस पे आप मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं, जो कोई जो जिसके ऊपर आप काम छोड़ के मुतमईन हो सकते हैं। तो अल्लाह काफी है वकील। अब देखें दुनिया में भी आप एक अच्छा वकील कर लेते ना अपने केस के लिए, बहुत पूरे मुल्क का जो नामी ग्रामी वकील है, सबसे बड़ा वकील आप कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप कहते हैं जी हमने अपना केस फलां को दे दिया, अब फिक्र की बात नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है हमने कौन सा वकील हायर किया। और जो अल्लाह को अपना वकील बना ले, सुभान अल्लाह, फिर उसको किसी मामले में खौफजदा होने की जरूरत है? फिर वो खुद को अकेला महसूस कर सकता है? अल्लाह पे भरोसा कर लो और वो काफी है वकील तुम्हारे लिए, वो खुद ही संभाल लेगा ना सब कुछ। जो मुश्किलात आ रही हैं, जो लोगों की बातें आ रही हैं, जो उनमें घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तसल्ली दे दी, तवक्कल करके तो देखो तुम अल्लाह को काफी पाओगे, काफी, वो ही काफी है। अगर इतने से इंसान जो कभी मुकदमे हारते हैं और कभी जीतते हैं और कभी हारते हैं, उनके ऊपर हम तवक्कल करके और उनको कहते हैं कि ये हमारा कारसाज है, ये हमारा काम बना देगा, तो जो अल्लाह पे तवक्कल कर दे, ये तो इंसान है, जो अल्लाह पे तवक्कल कर ले फिर वो कैसे घबरा सकता है। तो लोगों की जो बातें उनकी प्रोपेगेंडे उनकी स्कैंडलाइजिंग है, उससे नहीं घबराना। अल्लाह ताला के हुक्म मानने में उस पे तवक्कल करना। असल में जब हम लोगों की तारीफों से मुतासिर होने लगे या उनकी क्रिटिसाइजिंग हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन जाए, तो इसका मतलब है कि तवक्कुल अल्लाह पर नहीं है, भरोसा नहीं है अल्लाह, इसीलिए हम बस खौफजदा भी उनसे हैं और उनसे उनकी तारीफों के ऊपर भी उनके लिए आगे रीझे जा रहे हैं, फिर इसीलिए अल्लाह की बात छोड़ के उनकी मान लेते हैं। हालांकि हक बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो खदशात तो उठ रहे थे जो एक नेचुरल बात है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये चार हुक्म दिए। तवक्कल होगा, अल्लाह पे भरोसा होगा, तो ही इत्तेबा हो सकती, तो ही इत्तेबा मा युहा इलैका हो सकती है। तो चूंकि आगे अल्लाह ताला कुछ बातों के लिए हुक्म देने वाले हैं, इसलिए जो आगे हुक्म आ रहे हैं उनसे पहले एक तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप तकवा अल्लाह का इख्तियार करें, आपने इनकी बातों की नहीं परवाह करनी, इनकी बातों में ना आइएगा, आपने बस वो करना है जो अल्लाह की वही है, और आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए, वो आपके लिए काफी है वकील, क्योंकि आगे आने वाली है बात ना, ठीक है। ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, नहीं बनाए अल्लाह ने किसी शख्स के लिए दो दिलों में से इसके पेट में, किसी के पेट में दो दिल नहीं अल्लाह ने किसी आदमी में रखे। क्या मतलब है? यानी फिजिकली भी वैसे भी किसी के भी अंदर दो दिल नहीं है। एक आदमी हुआ करता था, वो कहता था कि वो अपने आप को बड़ा अकलमंद कहता था, मैं जी बहुत यानी बड़ा समझदार और ये हूं और मेरे पास दो दिल हैं। तो कहा जाता है कि ये आयत उसके बारे में भी नाजिल हुई कि किसी इंसान के दो दिल नहीं बनाए गए, ठीक है। दूसरी बात यानी इसकी तफसीर में दो तीन बातें आती हैं ना, तो दूसरी बात ये आई कि अल्लाह ताला ने हजरत जैद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बयान फरमाई कि जो एक आदमी का बेटा हो वो दूसरे का बेटा नहीं हो सकता, नहीं या तो एक का होगा या दूसरे का होगा। जैसे एक दिल है, किसी इंसान में भी दो दिल नहीं हो सकते ना, एक दिल में या तो मोहब्बत होगी या नफरत होगी, एक दिल में या तो अल्लाह का खौफ होगा या बेखौफी होगी, एक दिल के अंदर दो चीजें नहीं समा सकती जो ऑपोजिट चीजें हों। एक दिल में नहीं हो सकती, तो किसी के अंदर दो दिल होंगे तो फिर तो हो सकती है ना, एक दिल मोहब्बत करता तो एक दिल नफरत करता, लेकिन किसी में दो दिल है ही नहीं। ये आगे की बात की तमहीद भी है, क्योंकि आगे जिहार की भी बात आ रही है। पहले जिहार की बात आएगी, फिर बेटे की बात आएगी। यानी जिहार में भी क्या है कि एक औरत को जो बीवी है उसको कहीं कह दे कि तू मेरी मां की तरह है, तू मेरी मां, तेरी पीठ मेरी मां की पीठ की तरह, किसी उसके ऑर्गन पे कह दे, किसी उज़्व पे उसके कह दे, या वैसे ही कह दे कि तू मेरी मां की तरह है आज से, तो वो मां नहीं बन जाएगी। यानी बीवी बीवी ही रहेगी, मां मां ही रहेगी, ना ही बेटा कहने से कोई बेटा बन जाए। एक ही चीज हो सकती है, या तो कोई बीवी हो या कोई मां हो, दोनों ही चीजें मिल सकती। एक इंसान में एक ही दिल होता है। इसी तरह एक दिल के अंदर या तो अल्लाह की मोहब्बत होगी या उसके दुश्मनों की मोहब्बत होगी, एक ही चीज हो सकती है ना, या आखरत की फिक्र होगी या दुनिया की फिक्र होगी, या वो उसके अंदर ईमान होगा या उसमें फिस्क फजूर होगा। वो दो दिल नहीं हुआ किसी के अंदर भी, ना दो दिल होते तो फिर था कि भाई हाँ एक दिल बीवी की तरफ है, एक दिल एक एक तरफ, एक दिल में वो बीवी है, एक दिल में वो माँ है, एक दिल में वो बेटा अपना है, एक दिल में वो दूसरे का बेटा। ऐसा नहीं है। यानी आगे की बातों के साथ भी इसकी मुनासिबत है। वैसे भी फिजिकली भी दिल की बात की जा रही, और दिल को चूंकि जितनी हमारी सोच है ना, उसका सेंटर दिल को कहा गया ना, तो एक दिल का मतलब ये है, दो दिल नहीं है, इसका मतलब दो ऑपोजिट सोचे नहीं हो सकती है एक इंसान के अंदर, मुमकिन ही नहीं है, ये फितरत के खिलाफ है। एक ही सोच होगी, एक ही चीज हो सकती है, या तो दिल खालिस हो सकता है या फिर दिल के अंदर खोट हो सकता है ना, दोनों चीजें तो नहीं है, एक में ही हो सकती। अच्छा हमारा तो मामला ये है कि हम तो दिल के हाथों इतना चलते हैं, कहते हैं दिल नहीं मान रहा था, वैसे शुक्र है एक ही दिल है, अगर दो दिल होते तो दो ना मानते तो हम तो बिल्कुल ही बैठ जाते ना, तो एक दिल है तो अभी तो एक दिल के हाथों ही हम मजबूर हो जाते, शुक्र है अल्लाह ने एक ही दिल रखा। तो एक तो ये बात समझ आई। अब आगे देखें इसी के ऊपर जो बात आगे जिहार की बात आ रही है, और ये वो रस्में थी जो चूंकि इतनी पक्की थी उस माशरे में कि बीवी को अगर कह दिया कि ये माँ है तो वो सारी उम्र के लिए, यानी कियामत तक के लिए वो कहते थे कि अब ये यानी मेरे लिए हराम हो गई है। जैसे माँ के पीठ यानी माँ के साथ, माँ की शर्मगाह आदमी के लिए हराम होती है, इसी तरह ये औरत माँ की तरह हो गई तो इसकी शर्मगाह ऐसे हो गई हराम मेरे लिए। तो ये एक ऐसी किस्म थी तलाक की, समझ लें, जिससे हमेशा के तले तलाक हो जाती थी। हमारे यहाँ तो एक तलाक बाइना भी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर आदमी मर जाता है या वो भी तलाक देता है तो फिर वापस पिछले शौहर के पास जा सकती है। लेकिन ये तो जिहार ऐसी चीज थी कि इससे तो कभी भी नहीं वो हलाल होती थी। अब इस जहालत की रस्म को या एक तलाक की किस्म को इस्लाम ने खत्म किया। इसमें कोई रुजू वगैरह कभी नहीं था कि रुजू कर लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने यहां पे फिर बता दिया कि ये रस्म कुछ नहीं है, इससे मुंह से बोलने से कोई मां नहीं बन जाती है। लेकिन ये इतनी मुश्किल बात थी ना, इसका आप अंदाजा इससे करें कि आज भी आप देखें कि नमाज रोजा ये वो करना हमारे लिए फिर भी आसान हो जाता है, लेकिन जो रस्मों रिवाज है ना, इनकी बेड़ियां होती हैं जो पैरों में पड़ जाती हैं तो इंसान चल नहीं पाता। फिर कहते हैं ये बेड़ियां है ना, शक्ल्स हैं, इनको तोड़ना पड़ता है और इनको तोड़ना आसान नहीं होता। पूरा का पूरा माशरा सोसाइटी इसमें फंसे होते हैं, आप आज करके देख लें कोई ऐसी बात जो कि जिसमें सोसाइटी पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो, आप उसे उलट करके देख लें, फिर देख लें कि कैसी बातें होती हैं और लोग जीना हराम कर देते हैं। लोग फिर डर के मारे, फिर जैसे चल रहे होते हैं माशरे वाले वैसे ही लोग चल रहे होते हैं, जैसे वैसे ही चलने लगते हैं, कहते नहीं किया तो हमारी नाक कट जाएगी, अगर हमने धूमधाम से नहीं किया तो हमारी नाक कट जाएगी, ये हमने अगर बाज लोगों को ये कहते हुए सुना यार हमने 40वीं और ये कुल वगैरह नहीं किया, आपको क्या पता, लोगों ने कहना पता नहीं आपने यानी माँ बाप की इनको बिल्कुल दुख ही नहीं हुआ, इन्होंने अपने माँ बाप के लिए भी नहीं कुछ किया, तो ये तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, हमें कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, हम नहीं ये इस तरह छोड़ सकते। तो हम मानते हैं कि ये चीजें सही नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, कहेंगे इन्होंने अपने माँ बाप के लिए इतना भी ना कर सके और इतने कंजूस हैं ये, इसलिए हम कर रहे हैं, हमें खिलाना है खाना सबको। इसी तरह आप जहेज देख लें, इसी तरह आप और चीजें देख लें, फिर कहते हैं हम क्या करें, हमारी अगली बच्चियों की शादियां नहीं होंगी अगर हमने ना जहेज दिया इतना ज्यादा, अगर हमने इनको ना ना भरा और ना हमने इतनी ग्रैंड शादियां की, तो फिर हम कैसे चलेंगे आगे भी, हमने इसी माशरे में रहना है ना। तो अच्छे भले जो कुरान पढ़ते भी हैं सब कुछ है, वो माशरे से अलग हटके जो माशरे के रस्म रिवाज हैं, जो हमारा कल्चर बन चुका है, उससे अलग हो के चलना कहते हैं मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। तो ये आसान नहीं था उस माशरे में भी, हम अगर आज समझते ना हमारे लिए ही है ये मुश्किल है, तो उस जमाने में भी ये इम्तिहान थे, उस जमाने में भी जो जाहिलियत की रस्में थी उनको कोई तोड़ के दिखाता, फिर उसके बाद देखो अच्छा ये तो इस तरह इन्होंने नहीं अपने बना लिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए जो मैं आगे बात आपको बता रही हूँ, ये शादी करने की इज्जत ज़ैनब के साथ इसी वजह से अवॉइड कर रहे थे, हालांकि हक बात थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये लोग बातें करेंगे और इससे इस्लाम के कॉज को नुकसान होगा। इसी तरह आप देख लें मुहर्रम के अंदर शादी करना, सफर में शादी करना, ये महीना मनहूस है वो महीना गम का, उसके अंदर कोई शादी करके दिखाए, फिर उसके बाद इतनी बातें उसको सुननी पड़ती, तो ये हमने खुद ही से बना ली हुई, हालांकि सबको पता है कि ये गलत बातें, फिर भी हम उनके ऊपर करते हैं। और अगर 10 मुहर्रम को कोई कर ले फिर उसके बाद देखें उसका हाल, तो ये तो मुंह की बातें ही है ना, खुद ही बनाई हुई है, लेकिन उनको हम ऐसे फॉलो करते हैं, ऐसे पाबंदी करते हैं उनकी जैसे कुरान और हदीस हो गया। तो ना तो उस वक्त जैसे आज आसान नहीं है, तो उस वक्त भी आसान नहीं था, लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने तोड़ी ना ये रस्में। तो यहां आप देखें अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जाला अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, कौन सी बीवियां, वो जो तुज़ाहिरूना तुम जिहार करते हो उनसे, उम्महातिकुम माए तुम्हारी, जिनसे तुमने जिहार किया, यानी जिहार किया का मतलब क्या कि ये कह दिया कि तुम मेरी मां की पीठ की तरह हो अब से, तो उससे वो मां नहीं बन जाती, तू नहीं बनाया उनको तुम्हारी माए अल्लाह ने, यानी आप अगर इसका पढ़े अम्मा जाला अज़वाजकुम उम्महातिकुम, तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी माए नहीं बनाया वो जिनसे तुम जिहार करते हो, समझ आए, जिनसे तुमने जिहार कर लिया वो तुम्हारी माए नहीं बन गई, अब कहने से सिर्फ के मैंने कह दिया तो अब मां बन गई है, ऐसा नहीं है। और सूरह मुजादला में आयत नंबर 2-4 तक फिर अल्लाह ताला ने इसका कानून बताया कि अगर कोई ऐसे मुंह से बात कह देता है तो ठीक है, फिर सिर्फ लेकिन उसकी वो तो नहीं होगी कि तलाक ऐसी हो गई कि क़यामत तक के लिए तलाक हो गई, ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन उसने एक बुरी बात मुंह से कही है, इस तरह नहीं कहना चाहिए, ये एक यानी देखिए ना आप एक ऐसे रिश्ते को, एक ऐसे पाक रिश्ते को, उसको साथ बीवी का इस तरह से करके उसकी पीठ को उस तरह से कह देना कितनी बुरी बात है। तो यार अब सिर्फ तौबा से काम नहीं बनेगा, अब अगर वापस बीवी के साथ ताल्लुक करना है तो कफारा दिए, तो कफारा क्या बताया गया कि फिर अब या तो वो आप सूरह मुजादला में देख सकते हैं कि या तो एक गुलाम आजाद करो, नहीं कर सकते तो पै दर पै यानी मुसलसल कंटिन्यूसली 2 महीने के रोजे रखने इस्लामी महीने के, और नहीं वो भी नहीं कर सकते, एक रोजा भी नहीं बीच में छोड़ना, नहीं वो भी कर सकते तो 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाना, ठीक है, तो वो तुम्हारी मां तो नहीं बन जाएगी, मगर उससे ये होगा कि तुम्हें ये कफारा दे के फिर उसके बाद उससे ताल्लुक कर सकते हो, इसके बगैर नहीं कर सकते। वमा जाला अदियाकुम अबनाकुम। अब यहां पे ये रस्म भी जो ले पालक एडॉप्टेड सन्स की थी, ले पालक बच्ची है बच्चा है, उसको जो हकीकी समझा जाता था उस रस्म को भी तोड़ दिया गया कि वो तुम्हारे वमा जाला और नहीं बनाया अदियाकुम यानी तुम्हारे एडॉप्टेड बच्चे जो हैं बेटे जो हैं उनको अबनाकुम तुम्हारे बेटे सके बेटे। जैसे बीवी मां नहीं बन जाती बोलने से, इसी तरह कोई भी अडॉप्टेड सन हकीकी बेटा नहीं बन जाता सिर्फ कहने से कि जी मेरा आज से ये मेरा बेटा है। हमारे वहां पे कितना ये ज्यादा है कि ये जी हमारे इसके मुंह बोले भाई हैं, ये उसका मुंह बोला बेटा है, इनको मैंने भाई बनाया हुआ है, इनको मैंने बाप बनाया हुआ है, इनको मैंने माँ बना लिया है, इनको मैंने बेटा बना लिया। हमारे यहाँ भी ये बहुत आम है। तो वो कहने से बेटा नहीं बन जाएगा कि अब से वो मेरा बेटा है, तो अब इसलिए ना मुझे इसके सामने हिजाब करने की जरूरत है ना कुछ, ना मैं इसके साथ कोई मतलब मुझे कोई इस तरह झिझक होनी चाहिए क्योंकि ये तो मेरा असली बेटा बन के, ऐसा नहीं है। जब ये चीज ही खत्म कर दी तो इसके बाद तो ज़ैनब से निकाह करना जायज है क्योंकि अब वो हकीकी बेटे नहीं है हज़रत ज़ैद जो, और हज़रत ज़ैद को लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। इस आयत के बाद फिर ज़ैद बिन हारसा कहने लगे कि फिर ये चीज खत्म कर दी गई इस्लाम में। हज़रत ज़ैद का वैसे तो मकाम और मर्तबा आपको इस बात से बता दूं, उनका मकाम और मर्तबा बहुत बहुत यानी एक यानी मर्तबे वाले सहाबी रसूल है। ये आपको पता है कि यमन में एक मुआज़्ज़ज़ कबीला था, उनसे इनका ताल्लुक था, माने हमेशा से ये कोई गुलाम नहीं थे। और इनकी वालदा जो थी एक दफा इनको लेकर अपने मैके गई, तो वहां ये कम उम्र थे अभी, तो वहां से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में लूट मार हुई और इनको वो उठा के ले गए जो भी डाकू थे या जो लूट मार करने वाले थे। और इनको उस जमाने में ऐसे होता था कि गुलाम बना के बेच दिया करते थे, तो उन्होंने इनको गुलाम बना के औकाज के बाजार में बेच दिया था। तो हजरत हकीम बिन हज्जाम ने इनको 400 दिरहम में खरीद के अपनी पुप्पी को दिया था गिफ्ट, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी हजरत खदीजा से, तो उन्होंने हजरत ज़ैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा कर दिया था। ठीक है, तो ये हजरत ज़ैद जो थे ना, इनके वालिद हारसा जो थे, वो इनकी गुमशुदगी की वजह से बहुत गमगीन रहते थे, यानी अक्सर रोते रहते थे। अब क्या हुआ कि कुछ लोग उनके इलाके के हज करने के लिए आए, तो उन्होंने हजरत ज़ैद को पहचान लिया और हजरत ज़ैद ने भी उनको पहचान लिया। उन्होंने जाके यमन में इनके वालिद को खबर दी कि भाई आपका बच्चा फलां जगह पे है। तो हारिसा और उनके भाई जो थे काब, वो फिदिये की रकम लेके मक्का पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में थे, वो आगे कहने लगे हैं अब्दुल मुतलिब के बेटे, इस कौम के सरदार के बेटे, आप लोग अल्लाह के हरम में रहने वाले हैं, आप गुलामों की गर्दनें आजाद करते हैं, कैदियों को कैद से छुड़ाते हैं, हम अपने बेटे और आपके गुलाम के सिलसिले में आपके पास आए हैं, आप हम पे ये एहसान फरमाएं, ये इसका फिदिया ले लें और इसको आजाद कर दें। आपने पूछा तुम्हारा बेटा कौन है, उन्होंने कहा ज़ैद बिन हारिसा। आपने फरमाया इसको बुला लो और उसको इख्तियार दे दो, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो चले जाए, मुझे कोई मसला नहीं, मैं फिदिये के बगैर ही उसको भेज दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहना पसंद करे तो अल्लाह की कसम जो शख्स मेरे साथ रहने को इख्तियार करेगा मैं इस पे फिदिया इख्तियार करने वाला नहीं। फिर आपने हज़रत ज़ैद को बुलाया, फरमाया क्या तुम पहचानते हो उनको, उन्होंने कहा हाँ ये मेरे वालिद है मेरे चचा है। आपने फरमाया तुमको इल्म है कि मैं कौन हूँ और तुम मेरे साथ सलूक को भी पहचानते हो, अब तुम्हारे पास इख्तियार है, दोनों में से जिसको चाहो इख्तियार कर लो। हज़रत ज़ैद ने कहा मैं आपके ऊपर किसी आदमी को भी तरजीह नहीं दे सकता, मेरे बाप और चचा तो आप ही हैं। तो उनके वालिद ने और चचा ने कहा ज़ैद तुम पे अफसोस हो, तुम गुलामी को आजादी पे तरजीह दे रहे हो, अपने बाप अपने चचा अपने घर वालों पे इनको तरजीह दे रहे हो। ज़ैद ने फरमाया हाँ मैंने इनकी ऐसी सीरत देखी है कि इन पे किसी को भी तरजीह नहीं दे सकता। جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا نا تو ان کو اپنی گود میں بٹھایا, فرمایا لوگوں گواہ ہو جا, بے شک زید آج سے میرا بیٹا ہے, یہ میرا وارث ہوگا, میں اس کا وارث ہوں گا. جب انہوں نے باپ اور چچا نے یہ منظر دیکھا وہ خوش ہو گئے, وہ واپس چلے گئے. پھر تب سے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. تو اس طرح سے یہ چیز ہوئی تھی. پھر یہ حضرت زید جو تھے غزوہ بدر میں اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے, غزوہ موتا میں پھر ان کی شہادت ہوئی تھی, اور کئی مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر میں بھی حضرت زید کو بھیجا اس میں انہی کو امیر بنایا, اور اگر وہ زندہ رہتے تو انہی کو اپنے بعد جان نشین مقرر فرماتے, اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزیز تھے. تو انہی کا ذکر, یہ واحد ایک صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم بے شک زید بن حارثہ امارت کے لائق ہے, اور بے شک یعنی امیر بننے کے, اور بے شک وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے. اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہی ان سے. امام ترمذی نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ دروازے کی طرف گئے, دروازہ کھولا, ان کو سامنے پایا تو ان کو گلے سے لگایا, ان کو بوسا دیا. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں, عبداللہ بن عمر جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ مقرر کیا. عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا یعنی وظیفہ کم مقرر کیا اور اسامہ بن زید کا زیادہ مقرر کیا. تو میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے کیوں ان کا زیادہ مقرر کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اسامہ تمہاری بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے, اور تمہارے باپ کی بنسبت اسامہ کا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا, یعنی حضرت زید. اتنے تھے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے ان کو بیٹا ہی سمجھ لیں, ایک بنایا ایسے ہی نہیں تھا بلکہ بیٹا سمجھتے تھے, لیکن جب یہاں پہ آ گیا کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے, منہ بولے بیٹے کو آپ بیٹا کہہ کے کہ میں ڈکلیئر کر دوں یہ میرا بیٹا, تو اس سے میرا بیٹا نہیں بن جاتا. چاہے پالا ہو چاہے سمجھا ہو, وہ ٹھیک ہے پالا بھی ہو سکتا ہے سمجھا بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ اصل بیٹا نہیں بن سکتا. اسی لیے کوئی اڈاپٹ بھی کرتا ہے اگر بچہ کوئی, تو اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا سکا بیٹا ہے, وہ اپنے نام اپنا اس کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اور اس رسم کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی کام کروایا گیا, کیونکہ یہ بھی بڑی یعنی گہری رسم تھی ان کی, اور اس کو توڑنا ایسے ہی تھا کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دینا. یہ کیا بات ہوئی, انہوں نے اپنے محرم رشتے کے ساتھ شادی کر لی. تو یہ بتایا گیا کہ وہ بیٹے ہیں ہی نہیں, اس لیے ان کی بیوی جائز ہے جو ان کی ایکس وائف تھی. اور دیکھیں سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کتنی تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی زیادہ اپنے مشن کو آگے رکھتے تھے. یہ اس مشن میں نہ کوئی ہے ایسی, کیونکہ لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں نا, جب ایسے منافقین اور ایسے لوگ باتیں کریں گے تو کئی کمزور ایمان والے وہ بھی ان کے ساتھ ہی پھر چل پڑتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا, کسی انسان کو لوگوں نے نیچا کرنا ہو, الیکشن میں ہروانا ہو, ذاتیات پہ اتر آتے, اس کی ذات کے اوپر. حالانکہ ذات کے اوپر آپ کو کیا, جو کوئی میسج لے کر آ رہا ہے آپ وہ دیکھو کہ اس کا میسج کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ جو بات ہے اس کو چھوڑ کے اور ان چیزوں کے اندر تھے کہ یہ دیکھیں, یہ اب دیکھا انہوں نے ایسا کیا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہوں کی. یہ تمہارے منہ کی صرف باتیں ہیں کہ اگر کسی کو بیوی بنا, بیوی کو ماں کہہ دیا, یا ایک لڑکے کو پالا تو اس کو اپنا سکا بیٹا کہہ دیا, یہ منہ کی بات ہے. منہ کی بات کہنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. या इसी तरह मुंह की बात कहना, मसलन आप किसी को बेटा कह के पुकारते हैं, तो उससे वो बेटा सिर्फ मुंह की बात है, यानी आपका बेटा वो बन नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं किसी को, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी को आप माँ जी कह देते हैं, किसी को आप खाला जान कह देते हैं, बेटा कह देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इससे ये मेरा सक्का बेटा नहीं बन गया। ठीक है, वल्लाहु यकूलुल हक, अल्लाह ताला हक फरमाता है। अल्लाह ताला जो बात है ना, जो सही बात है, जो सच्ची बात है, अल्लाह ताला वो बताता है, इंसाफ वाली। वहुवा यहदिस सबील, और वो रहनुमाई करता है रास्ते की, इस रास्ते की तरफ भी वो रहनुमाई कर रहा है, यानी ये बात भी वो बता रहा है जो हक बात कहने वाला है। और यही हक है कि देखें, जो माँ का मकाम है वो माँ का है, बीवी का जो मकाम है वो बीवी का हो। माँ बीवी नहीं बन सकती, बीवी माँ नहीं बन सकती। दूसरे का बेटा आपका बेटा जितना मर्जी आपके करीब हो जाए, लेकिन वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं बन सकता।